नमस्कार, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दशावंत एक पुरानी कहावत है, एक बच्चा जब जवान होता है यानी 19-20 साल का हो जाता है तब फिर वो सोचने लगता है कि मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, सारी दुनिया बदल दूंगा। फिर धीरे धीरे वो जवान जो है 30-35 साल का हो जाता है तब फिर सोचता है कि छोड़ो, दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपने परिवार वालों को तो मैं जरूर बदल के रख दूंगा। फिर धीरे धीरे वो 60-65 साल का हो जाता है तब फिर उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, तो फिर वो सोचता है कि छोड़ो दुनिया को, छोड़ो परिवार को, अगर मैं अपने आप को थोड़ा बदल पाऊँ यही बहुत बड़ी चीज होगी। समझ गए ना आप इसका मतलब? ऐसे ही कुछ समझने वाले लोग हैं हमारे पास, आज हमारे गेस्ट बन के आए हैं कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो दुनिया में नई रास्ता कैसे पाना है उसको खोजने आए हैं, और उनको रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। आइए उनका स्वागत करते हैं और आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। दीदी नमस्कार, आपको स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। दीदी जैसे मैंने बोला कि जैसे एक उम्र हो जाने के बाद हम लोग को समझ में आ जाता है कि जिंदगी क्या है, किसी को बदलना इतना आसान नहीं, खुद को बदलना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जरूरी भी है। लेकिन तब तक थोड़ा देर हो जाता है, मन में बहुत सारा चीज लगता है कि ये चीज शायद थोड़ा पहले अगर समझ में आ जाता अच्छा होता, तो उस एज में थोड़ा निराशा होता है, दुख होता है। तो ये सब उस एज में एक इंसान को किस तरह से जिंदगी को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी पढ़ाई है जिसमें सीनियर भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब पढ़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो सीनियर हैं वो घर के लिए एक छत्र छाया है, सिंगार है। तो यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी सीनियर को बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया जाता है, माना जाता है, परंतु उनके मन में एक निराशा रहती है कि हम बुजुर्ग हो गए, हमें कौन पूछेगा। इसलिए वर्तमान समय क्या किया जाता है, सीनियर हाउस बना दिए जाते हैं, वानप्रस्थ के लिए अलग रहने का स्थान बना दिया जाता है, परंतु वास्तव में ये नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए दो चीज, प्यार और रिस्पेक्ट। अगर परिवार वाले बात समझ लें कि हमारे बुजुर्ग हमारी छत्री है, हमारे घर के सिंगार हैं, हमें इनको सदा रिगार्ड और इसने से संभालना है, तो जो बुजुर्ग भाई बहन है उनके अंदर जो कमजोरी आती है या जो निराशा आती है वो नहीं आएगी। और एक दूसरा उपाय है कि अगर बुजुर्ग अपने आप को समझ ले कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और मुझे वर्तमान समय किस तरह चलना है, तो भी वो अपनी निराशा और कमजोरी को दूर कर सकता है। उन बातों को ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर सब बताया जाता है, जिससे बुजुर्ग होने के बाद भी वो शांत, निराश और दुखी ना हो।
ये तो हुआ जो यहाँ पर आ सकते हैं।
हाँ,
ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि सुविधा नहीं है कि वो ऐसे संस्था में आ सके, तो फिर आप उनको क्या बोले? क्योंकि हमारे बहुत सारा दर्शक ऐसे देख रहे हैं गांव में कहाँ कहाँ रहते हैं जिनको कि ये चीज शायद सुविधा नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे, क्या करें वो?
जहाँ पर वो जा सकते हैं तो जाएं, लेकिन बहुत ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई हैं जो जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमारे विद्यालय के जो भाई बहन हैं, जो डेडिकेटेड भाई बहन हैं, वो ये सेवा करते हैं कि उनके पास जाकर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जहां वो बैठकर मेडिटेशन कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है और ज्ञान के विषय को गहराई से समझ सकता है। वो खुद जाकर उनके पास ये सेवा देती है और दे रही है।
दीदी अभी हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू करें, कुछ प्रश्न है हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछने वाले हैं वो है पद्मनाभ कुंडू।
शास्त्रों और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि मानव मरने के बाद उसका कर्म का अच्छा और बुरा कर्म का फल स्वर्ग और नरक में भोगना पड़ता है, तो हम इसे क्लैरिफिकेशन जानना चाहता हूँ, ये क्या मरने के बाद स्वर्ग और नरकों को जाते हैं और नहीं?
आप ये सत्य कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन ऐसा है जो उसे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। एक फल है वो आप खाएंगे नहीं खाएंगे, आपकी इच्छा, सेब है अंगूर है अनार है, लेकिन कर्म का फल खाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर ही नरक है यहाँ पर ही स्वर्ग है। जब मनुष्य मरता है तो वो उससे पूछा जाता है तो वो व्यक्ति को क्या उत्तर देता है कि वो स्वर्ग सिधार गया, स्वर्ग चला गया, उसका मतलब है कि वो नरक में था। स्वर्ग चला गया तो अंडरस्टूड है कि वो पहले नरक में था। फिर भी आप देखिए हम उसे बुलाते हैं नरक का खाना खाने के लिए, जब खुद कहते हो कि वो स्वर्ग चला गया और अंडरस्टूड है नरक में बैठा है तो उसको बुलाने की क्या जरूरत है? वास्तव में अभी ऐसी पाप की और भ्रष्टाचार की दुनिया को हम स्वर्ग नहीं कहेंगे। जब स्वर्ग होगा तो इस दुनिया का कोई भी चिन्ह मात्र आपको दिखाई नहीं देगा, और जब नरक है तो स्वर्ग की दुनिया का चिन्ह मात्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो कि वर्तमान समय होना चाहिए स्वर्ग के, वो कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं है। नरक के चिन्ह अलग है और स्वर्ग के चिन्ह अलग है। स्वर्ग में तो प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्ति, नम्रता, धैर्यता, सब चीज की धारा बहती थी। जहाँ इतिहास में लिखा है, पुराणों में लिखा है, एक समय स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, हीरे जवाहरात के महल थे, घी दूध की नदियां बहती थी, श्री राम सीता का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राधे कृष्ण थे। आज वो नहीं है, ना कोई राधा है ना कोई कृष्ण है, क्योंकि वैसा कर्म नहीं है। वर्तमान समय तो भोगनाओं का समय है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी भोगते हैं तो अभी का कर्म का फल भी भोगते हैं, इसी का नाम है नरक। स्वर्ग में जाने की
ये जो अभी हम लोग यहाँ पर है ये नरक ही है।
नरक है
तो यहाँ अगर हम अच्छा काम करेंगे तो फिर हम स्वर्ग में जाएंगे।
जो अच्छा काम कर रही है या परमपिता परमात्मा जो वर्तमान समय अधर्म की ग्लानि के टाइम पर ज्ञान दे रही है, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को सुख शांति पवित्रता आनंद शक्ति सब चीज का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके लिए हम नरक नहीं कहेंगे ना स्वर्ग कहेंगे, बल्कि वो बीच के समय पर है। अति का अंत है और आदि का शुरुआत का समय, जैसे अमृत वेला कहा जाता है, सुबह 4 से 6 बजे के समय को ना रात कहते हैं ना दिन कहते हैं, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त। तो वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में चल रहे हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में जाने की सब तैयारियां कर रहे हैं, अपने जीवन को सफलता को लेने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है दीदी, अभी हम दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे जो पूछने वाले हैं श्री भजनानंद नायक।
टिल डेट आई हैव स्पेंट माई लाइफ आइडियली, आई वांट दैट माई चिल्ड्रन शुड फॉलो इट, बट दे आर नॉट फॉलोइंग आइडियोलॉजी, व्हाट इज द सॉल्यूशन?
वो पूछ रहे हैं कि वो अपने लाइफ जिंदगी को जैसे जीना चाहिए वैसे जी रहे, अच्छी तरीके से जिए हैं, लेकिन उनके बच्चे वैसा नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उनकी तरह हो, जैसे कि अच्छा लाइफ जिए। अच्छा का मतलब है कि जैसे स्पिरिचुअल हो, अच्छे सही सच के रास्ते में जाए, तो क्या करना होगा?
आप जब अपने जीवन को बदल रहे हैं और स्पिरिचुअल बातों को जीवन में धारण कर रहे हैं तो आपका ड्यूटी है कि आप बच्चों को बताइए और उनको रास्ता दिखाइए कि मैं जहां जाता हूं या मैं जो चीजों को प्राप्त कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, आप भी लीजिए। लेकिन वो नहीं मानते हैं तो आप उनको जबरदस्ती मत करिए। हर चीज में हर कोई नहीं जा सकता है, परंतु आपका इतना ही ड्यूटी और कर्तव्य है कि आप परिवार के हर एक व्यक्ति को बताओ कि अभी आध्यात्मिक शक्ति आप अपने जीवन में लाओ, अनेक गुण और मूल्यों से जीवन को भरो, जो जीवन एक आदर्श बन जाए। और बताने के बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो आपका कुछ इसमें दोष नहीं है और आपको चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सृष्टि एक नाटक है। इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा, चाहे आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, स्त्री है, पुरुष है, वो अपना अपना पार्ट बजाने के लिए यहाँ सृष्टि पर आई है। तो किसका क्या पार्ट है आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप अपना पार्ट श्रेष्ठ कर रही हैं और उनको बता रही हैं, रास्ता दे रही हैं। वो नहीं लेता है तो आप सोचिए उसका यही पार्ट है।
या फिर दीदी ये सकता है कि जैसे वाल्मीकि बदल गए ना,
हाँ।
तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बता दें। अब उनका हो सकता है समय आने पर वो बदल भी जाए, दिमाग में तो रहे कम से कम, ये कर्तव्य तो हम कर सकते हैं।
उनको तो सदा आपको रखना चाहिए,
हाँ।
कि मैं इनको बदलूंगा, मैं इनको ले जाऊंगा। हमेशा मेहनत करते रहिए, एक दिन आएगा वो आपकी बात का उस पर असर हो जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ जब प्रैक्टिकल हो जाएगी तो प्रैक्टिकल बात का तो प्रभाव पड़ता है। आपने कितनों का जीवन ऐसा देखा है।
आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस संस्था ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी टू ब्रिंग इंडिविजुअल पीस।
ब्रह्मा कुमारी संस्था को खुले हुए यहाँ पर उड़ीसा के अंदर 39 वर्ष हो गए और सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे। ये कटक उसका फाउंडेशन प्लेस है और अभी तक करीब 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, परमात्मिक प्राप्ति का अनुभव और सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन कर रहे हैं। कम से कम 1,000 इसकी ब्रांचेज हैं, छोटी बड़ी, गांव, सब डिवीजन हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब जगह इसकी ब्रांचेज हैं। तो आप जो अनुभवी हैं उनका जीवन देखकर आप ये समझ लेंगे कि यहाँ किस प्रकार से शांति दी जाती है। यहाँ का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप 7 दिन 1 घंटे के लिए आइए और 1 घंटे इस ज्ञान का श्रवण करिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद गॉड रियलाइजेशन कराया जाता है, तब मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो ये 4 चीजें मिलने से आपको इतनी विल पावर आएगी, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, आप कितनी भी अशांति के वातावरण में रहेंगे लेकिन आप शांति स्वरूप स्थिति में रह सकेंगे।
ड्यूरिंग आवर यंग एज वी आर टेलिंग दैट old is gold, but now the younger generations, they are telling that old is to be sold, which is correct and why?
सही तो यही है जो पहले जमाने में कहा जाता कि पुराना सोना है, old is gold कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय ऐसा मॉडर्न स्टाइल हो गया है जो बच्चे बुजुर्गों को नहीं मानते हैं। आपको मालूम होगा महाभारत की एक बात है कि जब लड़ाई का, युद्ध का क्षेत्र लास्ट में आया तब पांडवों ने श्री कृष्ण को पूछा, भगवान आप कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा था कि आप 4 कोनों में जा करके आश्चर्यजनक बात देख के आओ, उसी टाइम पर हम मिलेंगे। तो उन्होंने 4 आश्चर्यजनक बात देखी। एक ये देखी कि एक कुआ 4 कुओं को पानी भर रहा है और 4 कुएं 1 कुएं को पानी नहीं दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने देखा एक 2 सूंड वाला हाथी है जो दोनों तरफ से खा रहा है। और तीसरी बात उन्होंने देखी कि एक चिड़िया उसके मुख में मंत्र है और पैर में मांस मछली है। चौथी बात देखी कि गाय बछड़ी का दूध पी रही है, ये आश्चर्यजनक बातें देखी। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। पहले जमाना था, एक माता पिता अपने चार बच्चों की फैमिली को चलाते थे, माने चार कुओं को भरते थे। आज चार बच्चे एक माँ बाप को नहीं चला सकते हैं और कहते हैं दो महीना इस बच्चे के पास रहो, दो महीना इस बच्चे के पास, दो महीना नहीं तो आप सीनियर सिटीजन को कहीं जो बानप्रस्थ के स्कूल वगैरह खोले हैं या हाउस बनाए हैं उसमें भेज दो। तो वो समय पहले नहीं था, माता पिता चार बच्चों को संभालते हैं लेकिन बच्चे चार होते हुए एक को नहीं संभालते। दूसरी बात है हाथी दोनों तरफ से पानी पी रहा है, खा रहा है, वो अपना सर्विस जो जॉब करता है वो भी लेता है, फिर रिश्वत भी लेता है, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, दोनों तरफ से खाता है फिर भी उसका पेट सूख रहा है, क्योंकि वो जो खा रहा है उसमें ऑनेस्टी, उसमें प्यार, उसमें शांति, शक्ति, मूल्य नहीं है, इसलिए उसका पेट सूखता जाता है। तीसरी बात उसने देखी कि एक चिड़िया है, उसके मुख में तो मंत्र है, पैर में मांस मछली है। इतने बड़े बड़े पंडित पुजारी हैं जो मुंह से तो राम राम जपते हैं लेकिन मुख में राम, बगल में छुरी, और मांस मछली सब बेसनों का सेवन करते हैं। और चौथी बात, गाय बछड़ी का दूध पीती है। पहले जमाना था, कभी कन्याएं के घर में माता पिता खाना नहीं खाते थे, आज जब बच्चे धक्का देती है, नहीं संभालती है, तो कन्याएं के घर में माता पिता जाकर रहती है, उनका खाती है, उसका ये अर्थ है। जब ऐसा समय आता है तब प्रभु संसार में आती है। तो आपको यह विद्यालय में यही संदेश दिया जा रहा है कि अभी अति अधर्म के समय, जबकि पाप का घड़ा भर गया है, सब काम उल्टा हो रहा है, ऐसे समय परमात्मा खुद आई है अपने सभी बानप्रस्थ भाइयों को गले से लगाने के लिए, उनको सुख शांति प्रेम आनंद देने के लिए। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप भी उस परमात्मा के वर्षे को, बर्थ राइट को यहाँ आकर के लेने की पुरुषार्थ करिए।
वही पुराने चीज में विश्वास ही रखिए, वही सही था, ठीक है।
पारिवारिक सुख शांति आने के लिए स्पिरिचुअल कोई सहायता करे,
परिवार में सुख शांति ये तो है ही, परिवार के लिए विद्यालय। परिवार में सुख शांति जब आएगी जब परिवार का एक भी मेंबर बदल जाएगा। आप सोचिए कि मुझे परिवार में सुख शांति फैलानी है तो पहले आपको बदलना होगा। कहा जाता है कि स्वयं बदलेंगे तब परिवार बदलेगा, तब हमारा अड़ोस पड़ोस बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, शहर बदलेगा और विश्व बदलेगा। और जहां हम ही नहीं बदलेंगे और कहेंगे परिवार में हम स्पिरिचुअलिटी ले आए और वो बदल जाए, ये असंभव है। इसलिए पहले फर्स्ट आपको प्रचार करना पड़ेगा कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में जाकर आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन लेकर, यहाँ कोई एडमिशन फी नहीं है, सिर्फ आपको एक घंटे का समय देना है, देकर आप स्पिरिचुअलिटी के लीडर बन जाइए और सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। तब आप एक से दो को, दो से तीन को, वन प्लस वन जब हो जाएगा तो आपको वही सारा परिवार सुखी नजर आएगा। आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, यहाँ बादामबड़ी में एक परिवार था, चार चार बहुए थी, हर दिन कुछ ना कुछ अशांति, लड़ाई झगड़ा। हमने उनको समझाया कि आप आते हो, आपका एक बेटा आता है, लेकिन चारों बहुओं और चारों बेटों को भेजिए। वो धीरे धीरे देखा कि सब आने लगे। वही उनकी सास कहने लगी कि बहन जी मेरे घर में तो स्वर्ग आ गया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया। एक के बदलने से हजार को हम बदल सकते हैं। जगा हुआ दीपक होता है वो 1000 बुझे हुए दीपकों को जगा सकता है। तो आप अकेले जब आध्यात्मिक शक्ति को ले लेंगे तो आप अपने परिवार में आध्यात्मिकता की लहर फैला देंगे और आपको अनुभव होगा कि मेरे साथ साथ ये सब बदल रही है, अनुभव का विषय है सर।
हम घर में बैठ के कहाँ पर नहीं जाके ये अपने आप को बदलने का काम कर सकते हैं?
उनके पास वो ज्ञान नहीं है। आप देखिए, उनको ज्ञान है शरीर का, मेरा पेट में दर्द है, हाथ ऐसा है, ये है वो है, लेकिन जो बोलने चलने वाली पावर है ये एक शरीर मोटर है और इसको ड्राइव करने वाला ड्राइवर चालक है जो यहाँ रहता है आत्मा। अगर आप सोचिए ड्राइवर ठीक है तो वो बिगड़ी गाड़ी को भी ठीक करके चला लेगा। अगर ड्राइवर की स्थिति ठीक नहीं है तो गाड़ी अच्छी है फिर भी ब्रेक पर डाल देगा कि मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं कुछ नहीं करूंगी। तो सबसे पहले जरूरी है आत्मज्ञान होना। जो इसको चलाने वाला वाहन को चालक है उसको ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है, उसकी शक्ति क्या है? मन है, बुद्धि है, संस्कार है। मन को समझने से आप मन और बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, जब उसके साथ जोड़ेंगे तो उससे आपको शक्ति मिलेगी, उसी को कहा जाता है राजयोग। जब वो राजयोग की शक्ति प्राप्त होगी तो आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। मान लीजिए आपके घर में 15 आदमी है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार से 10 को बदला या 5 नहीं बदले तो भी आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉलेज के आधार से आपको ये पता पड़ जाएगा कि हर एक का तो एक सा पार्ट नहीं है। जब मंच पर कोई एक्टर खेल खेलते हैं, कोई रावण का बजाता है, कोई राम का, कोई सीता का, कोई हनुमान का, कोई गणेश का, तो इसमें से 10 का पार्ट है जो मेरा साथ दे रहे हैं और 5 का पार्ट साथ नहीं दे रहे हैं, पर आप विचलित नहीं होंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, वो आपके सहयोगी जरूर बन जाएंगे, साथ देवे ना देवे आपके प्रभाव से, ऐसा अनुभव है।
तो हम कोशिश करें कि अच्छा रोल जो है हम खुद ही ले लें,
खुद ही ले लें,
बाकी लोगों को दूसरा उससे थोड़ा थोड़ा कम वाला रोल देते हैं, वो पाए
वो तो वो उससे आगे भी जा सकते हैं।
हाँ,
भाग्य का किसी को कुछ पता है?
ना।
माँ बाप सोचते नहीं है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, पर वो बन जाता है।
हाँ।
और जो सोचते हैं बने, मारते हैं, पीटते हैं, पढ़ाते हैं, वो नहीं बनता है। कोई क्रोध से और मारपीट से कोई डिग्री पास नहीं कर सकता है, ना करोड़पति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे मैं करोड़पति बनूं, और जब ग्राहक आता है तो वो सोया रहता है, उनको डांटता है, क्रोध करता है, करोड़पति बनेगा? कोई विद्यार्थी चाहे कि मैं फर्स्ट क्लास पास हूं, लेकिन पढ़ाई पढ़ता नहीं है, बसता रखता है, खेलता रहता है, तो पास होगा? तो हर एक का अपना अपना पार्ट है, आप उसी हिसाब से उसको डील करेंगे, लेकिन आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, परेशानियों से दूर हो जाएंगे। तो पहले हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को तो मिटाएं, बाद में हम दूसरे के विषय में, यहाँ सब सॉल्यूशन मिलता है। ये विद्यालय है ही, घर भी है, विद्यालय भी है, हॉस्पिटल भी है और आश्रम भी है। हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर, हर प्रकार की समस्याओं का हल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा।
क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारा जिंदगी बीत जाता है कि परिवार के साथ, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अचानक एक उम्र आता है जिस समय कि हमको समझ में आ जाता है कि परिवार से हम जो आशा रखते थे, हम जितना किए हैं उसके बदले हमको कुछ मिला नहीं, तो मन में दुख होता है। और अचानक जैसे हमारा एक हैबिट हो चुका है कि 50 साल 60 साल तक का एक हैबिट हो चुका है कि ये मेरा मेरा मेरा, अचानक हम कैसे उस हैबिट से निकले कि नहीं मेरा कोई नहीं है, हम सोल है, आत्मा है, हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ये लाना इतना सहज नहीं हो रहा है।
बिल्कुल सहज है, जब आप दो चीजें शरीर आत्मा, सोल का परिभाषा आपको मिल जाएगा और शरीर का परिभाषा आपको मिल गया तो सृष्टि की बातों को आप जान जाएंगे कि सृष्टि नाटक किस प्रकार चलता है। ये आपको मानना है और मानना ही पड़ेगा कि जो आता है वो जाएगा। तो मैं और मेरा सब चीज का नाश करता है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि एक नाटक है, नाटक में सब एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और मैं भी अपना ड्यूटी बजा रहा हूँ, ड्यूटी में कभी अटैचमेंट नहीं होता है, मोह जहाँ होता है वहां पर आपको रुलाता है। अगर हम अहम में रहेंगे तो हम अपने जीवन के जो सिंगार हैं, अलंकार हैं, उनको खत्म कर देंगे।
तो फिर
तो हम ना अहम में आए ना बहम में आए,
ठीक,
अहम और बहम दोनों को छोड़ दें और अपना पुरुषार्थ, अपनी स्टडी, आध्यात्मिक शिक्षा लेते जाए, तो आपको 15-20 दिन के अंदर ही अनुभव हो जाएगा। आपको इतनी खुशी लगेगी, हम तो अपने अनुभव के आधार से बता रहे हैं। हमने जब इसका 7 दिन का क्लास किया तो हमारे पैर भी पृथ्वी पर नहीं थे।
ये जो अगर इस तरह का हम रास्ता में जाए तो ये संभव है कि हमारा जो पुराना 50 साल का आदत है उसको छोड़ के हम सही रास्ता में जा सके।
जरूर।
ठीक है दीदी, आज के लिए इतना, क्योंकि हमारे पास
बीड़ी सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले भी छोड़ जाते हैं।
ठीक है दीदी,
बहुतों के अनुभव है।
दीदी आज हमारे पास इतना समय इतना ही था, तो हमारा कार्यक्रम को ही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बातचीत हम तो ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा ओकेजन आएगा, दूसरा मौका आएगा, फिर से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए और एक सही रास्ता में जाने का इच्छा अभी भी रखते हैं, एक अपने आप को बदलने का इच्छा रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है और आशा रखते हैं कि आप इससे कुछ हद सीख गए होंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और एक उम्र के बाद कैसे सही दिशा में जाए इसका रास्ता आप जरूर आज सीखे होंगे। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं, फिर अगले बार मिलेंगे और कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।